आन्या एक बार फिर उसकी गहरी काली आंखों में खो सी गई थी। लड़के ने उसकी बांह पकड़ी तो वो होश में लौटी और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। लड़के ने उसे सीट पर बिठा दिया और दूसरी तरफ चला गया। आन्या की निगाहें भीड़ में भी उसी पर टिकी हुई थीं। रात का वक्त था, उसने सुबह से ही कुछ खाया पिया नहीं था, तो अब उसे जोरों से भूख लग रही थी। वो अपने लबों पर जीभ फिराते हुए अपने सूखते लबों को गीला करने लगी। लड़का भले ही दिखा नहीं रहा था, पर बड़ी ही बारीकी से आन्या की हर मूवमेंट को देख रहा था। उसकी गहरी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। उसे वक्त नहीं लगा ये समझने में कि आन्या को भूख लगी है। वो उसके चेहरे को पढ़ सकता था, पर फिलहाल उससे दूर था, खामोशी से बैठा रहा। आन्या ने अपने छोटे से पिट्ठू बैग, जो वो साथ में लाई थी, उसमें से कैंडी निकाली और मुंह में डालने के बाद आंखें बंद करके सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई। थकान और स्ट्रेस के कारण उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसके बगल की सीट खाली हुई तो लड़का उसके पास आकर बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। घड़ी ने रात के 9 बजाए तो लड़के ने एक नज़र आन्या को देखा, जो बड़े सुकून से सो रही थी, फिर अपना लंच खोल लिया। खाने की खुशबू जैसे ही आन्या के नाक में गई, उसके लबों पर मुस्कान और मुंह से पानी आने लगा। कुछ देर बाद ही उसने झटके से अपनी आंखें खोल दीं और बगल में रखा खाना देख उसकी आंखों में चमक आ गई। इतनी भूख लगी थी कि उसने झट से दुपट्टा खोलकर गले में डाला और खाना खाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, पर बीच में ही रुक गई। लड़के की चोर निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं और अब उसके भाव कुछ सख्त हो गए थे। आन्या के सर पर लगी चोट, जिस पर खून सूख चुका था, लड़के की निगाहें वहीं टिकी हुई थीं और अब उसकी आंखें गुस्से से नीली होने लगी थीं। तभी अचानक उसके कानों में आन्या की मीठी सी आवाज़ पड़ी। क्या मैं खाना खा सकती हूँ? मुझे जोरों की भूख लगी है। चाहो तो मुझसे इसके पैसे ले लेना। ज़्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर खाने के पैसे दे सकूँ इतने पैसे हैं मुझ पर। उसकी आवाज़ सुनते ही लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि खुद को शांत और सामान्य कर सके। आंखें खोलीं तो सामने आन्या का मासूम सा चेहरा आ गया, जो आशा भरी निगाहों से इस वक्त उसे देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो आन्या ने क्यूट सी शक्ल बनाकर आगे कहा, मैंने सुबह नहीं कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। भूखे को खाना खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने पर भगवान खुश होते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे, मुझे खाने को दोगे, तो भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम्हें मिल जाएगा। क्या अब मैं तुम्हारा थोड़ा सा खाना खा सकती हूँ? उसने उसे बातों में बहलाने की कोशिश की, पर लड़के का सारा ध्यान तो इस बात पर था कि उसने कल दोपहर से कुछ खाया नहीं है। उसने बिना एक शब्द कहे खाना उसकी तरफ बढ़ा दिया तो आन्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जल्दी से एक बाइट ली और उसे मुंह में डालते ही अपनी आंखें बंद करके उसका मजा लेने लगी। लड़के की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, वहीं आन्या हर बात से बेखबर खुशी से खाना खा रही थी। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर दिया, फिर लड़के की तरफ नजरें उठाईं, पर लड़के ने उसके मूव को समझते हुए पहले ही उस पर से निगाहें फेर ली थीं। आन्या ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी खाना था, आपने बनाया था? नहीं, खरीदा था, लड़के ने बिना उसकी तरफ देखे हुए ही जवाब दिया। तो आन्या ने अपने पिट्ठू बैग से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे खाने के पैसे, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम्हारे काम आएंगे, तुम ही रख लो, लड़के ने एक बार फिर बिना उसे देखे ही कहा। उसकी बात सुनकर आन्या ने उसकी हथेली पकड़ ली तो लड़के की हैरानी भरी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं, पर आन्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने उसकी हथेली पर पैसे रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच, पर मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती, मैंने तुम्हारा खाना खाया तो अब ये पैसे तुम्हारे हुए। लड़के ने अब भी कुछ नहीं कहा और अपनी हथेली उसके हाथ से खींचकर सीधे बैठ गया। आन्या आदत से मजबूर थी, उसकी बकबक शुरू हो गई। लड़का दिखा नहीं रहा था, पर उसका सारा ध्यान आन्या की बातों पर था। शायद वो अपने सवालों के जवाब चाहता था, पर आन्या अपने दिल की बात आसानी से किसी को नहीं बताती थी। वो फालतू की बकवास कर रही थी और खुद ही हंसे भी जा रही थी, पर लड़के की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं था, तो भावहीन सा बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। आन्या के किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था। उसके रफ बिहेवियर को देखकर आन्या ने खींचते हुए कहा, तुम ये खामोशी और उदासी क्यों फैला रहे हो यहाँ? जुबान दी ही है भगवान ने तुम्हें, आवाज़ भी बुरी नहीं, तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? मौन व्रत भी नहीं तुम्हारा, थोड़ी देर पहले बोल तो रहे थे, फिर अब मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर दिमाग होता तुम्हारे पास तो समझ जाती कि मेरी खामोशी का मतलब है कि मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे पकाना बंद करके खामोश होकर बैठ जाती। पर शायद भगवान ने तुम्हें कभी ना रुकने वाला मुंह दिया, पर दिमाग देना ही भूल गए। लड़के ने सीधे सीधे बेचारी आन्या की इंसल्ट कर दी तो आन्या गुस्से से भड़क उठी। हेलो मिस्टर, ज़्यादा तो बोलो मत। हाँ, मुझे भगवान ने मुंह दिया है, तुम्हें भी दिया है, पर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। पर मैं तो जी भरकर अपने मुंह का इस्तेमाल करती हूँ, अब भगवान ने मुंह दिया है तो बोलूंगी तो सही, तुम्हारे तरह मुंह सड़ा कर नहीं बैठ सकती मैं। मुंह खाने के लिए दिया था भगवान ने और ज़रूरत पड़ने पर बोलने के लिए, उसका इस्तेमाल करना होता है। नॉन स्टॉप अपनी बकबक से दूसरों का दिमाग खराब करने के लिए नहीं दिया है भगवान ने मुंह। मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, आनिया ने चिढ़ते हुए कहा और मुंह बना लिया, पर आदत से मजबूर। भला वो कितनी देर चुप रह पाती। उसने लड़के को देखा और उसकी बाह को खींचा तो लड़के ने नजरें घुमाकर उसे घूर कर देखा। आनिया ने उसकी डरावनी आंखें देखी तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, यार तुम भी हद लड़के हो, इतने कोल्ड लुक्स क्यों देते रहते हो हर वक्त? कभी थोड़ा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो, पता है खुश रहने से खून बढ़ता है। लड़के ने कोई जवाब ही नहीं दिया और उसके हाथ को झटक दिया। अब आनिया ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो बहुत बोलती हूँ, आदत है मेरी। अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुमने मेरी मदद की थी और मैं अभी तुम्हारे अलावा यहाँ किसी को नहीं जानती। अगर मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगी तो मेरा छोटा सा दिमाग फट जाएगा, मुझे बोलने दो ना। लड़की ने ना तो उसकी तरफ देखा ना ही कोई रिस्पॉन्स किया तो आनिया उदास होकर बैठ गई। फिर उसने अपना फ़ोन निकालकर ऑन किया और सर्च करने लगी। कुछ देर बाद वो फ़ोन चलाते चलाते ही सो गई। लड़की की नज़रें बराबर उस पर बनी हुई थीं। भले ही वो दिखा नहीं रहा था, उससे बेरुखी से बात कर रहा था, पर फिर भी उसका ध्यान उसी पर था। आनिया नींद में थी तो उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट गया, पर वो नीचे गिरता उससे पहले ही उस लड़के ने उसे कैच कर लिया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर चली गईं। आनिया नासिक में रहने की जगह सर्च कर रही थी। ये देखकर लड़के ने एक नज़र आनिया को देखा, फिर उसके सामान को देखा। एक बार फिर उसकी नज़रें स्क्रीन की तरफ घूम गईं। आनिया के भाव अचानक ही बदलने लगे, जैसे वो सपने में कुछ बुरा देख रही हो। लड़के ने तुरंत उसकी कलाई थामते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने वो सब घूम गया जो आज सुबह से आनिया के साथ हुआ था।
निहाल का आना, उनकी बहस, आनिया को मारना, उसे कमरे में बंद करना और उसका वहां से भागना, ये सब देखते हुए लड़के की मुट्ठियां कस गईं, जिस वजह से आनिया की हथेली पर उसकी पकड़ कस गई। आनिया ने दर्द से छटपटाते हुए झटके से अपनी आंखें खोल दी। इसके साथ ही लड़के की आंखें भी खुल गईं और दोनों की निगाहें एक दूसरे से जा मिली। आनिया की आंखों में आंसू थे। उसने भरी निगाहों से अपने हाथ को देखा जिस पर पहले से कांच से चोट लग गई थी, और अब उस लड़के ने उसी जगह को कस के दबा दिया था जिसके वजह से आनिया को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए जब लड़के ने देखा कि उसकी कलाई से खून निकल रहा था तो उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा, सॉरी, वो तुम गिर रही थी इसलिए पकड़ा था। आनिया ने कुछ नहीं कहा, अपनी हथेली को अपने दुपट्टे से ढक लिया और दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। लड़के ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसकी कलाई पकड़ते हुए उस पर रुमाल बांधते हुए आराम से बोला, कहाँ जा रही हो? सवाल सुनकर पहले तो आनिया हैरानी से उसे देखने लगी, फिर उसने हाथ पीछे करते हुए कहा, नासिक। अकेले जा रही हो? लड़के ने फिर से सवाल किया तो आनिया ने हामी भर दी। लड़का पहले ही सब जान चुका था, पर उसने अनजान बनते हुए आगे सवाल किया, वहीं की रहने वाली हो? नहीं, वहां जा रही हूँ। किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जा रही होगी? नहीं, वहां मैं किसी को नहीं जानती, बस यूं ही जा रही हूँ। जहां रहती थी वहां तो न सुकून मिला न इज्जत, तो अब उसी सुकून की तलाश में जा रही हूँ। जहां किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। आनिया की बातों में एक दर्द और उदासी झलक रही थी। लड़के ने आगे कोई सवाल नहीं किया, पर अब उसके दिमाग में बस आनिया ही घूम रही थी। रात हो गई तो सभी लोग सो गए। आनिया अंधेरी रात में एक टक खिड़की के बाहर देखती रही। जाने इस अंधेरे में उसे ऐसा क्या दिख रहा था कि उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान छाई हुई थी। उसकी निगाहें जाने किसकी तलाश कर रही थी। लड़का आंखें बंद किए बैठा था, पर उसका ध्यान अब भी आनिया पर ही था। देखते देखते रात बीत गई। सूरज की किरणें आकाश में फैलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ मधुर संगीत की तरह कानों में घुलने लगी। सुबह की पहली किरण आनिया के चेहरे पर पड़ी तो उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर सुनहरी आभा फैल गई। इस वक्त उसका चांद सा सुंदर मुखड़ा दमक रहा था और वो बेहद हसीन लग रही थी। वो बाहर देखते देखते ही सो गई थी और वो लड़का आनिया के चांद से सोने मुखड़े को निहारे जा रहा था जो सूरज की तरह दमक रहा था। अलग ही कशिश थी उसके चेहरे में जो उसके ध्यान को अपनी तरफ खींच रही थी। सूरज की किरणें पड़ने से आनिया की नींद भी खुल गई तो लड़के ने तुरंत निगाहें फेर ली। आनिया ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली तो उसका खड़ूस चेहरा देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग, कभी मुस्कुरा भी लिया करो यार, हर वक्त इतना सीरियस चेहरा बनाकर रखते हो, इतना सीरियस रहोगे तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाएगा तुम्हें। इतना कहते हुए वो हल्का सा हंसती। वहीं लड़के ने घूर कर उसे देखा तो आनिया ने अपनी हंसी दबाई और उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, आनिया, आनिया नाम है मेरा, जानती हूँ बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह, मेरी माँ ने रखा था, कहा था अगर बेटी हुई तो यही नाम रखेंगी, ये बात मुझे दाई माँ ने बताई थी। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम मुझे बस गुस्से से घूरते ही रहते हो, सारे सफर पर हम साथ रहे, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो नाम तो पता होना ही चाहिए ना, मैंने तो अपना नाम बता दिया, तुम भी बता दो, वैसे देखने में बुरे नहीं हो, इतना हैंडसम चेहरा है और उस पर तुम्हारे कातिलाना लुक्स, पहली बार किसी लड़के को देखकर उस पर से नजरें हटाने का जी नहीं कर रहा मेरा, जी करता है बस तुम्हें देखती ही जाऊं। मानना पड़ेगा, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। कमाल की बॉडी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो किसी को भी अपना कायल बना दे। चेहरे पर अजीब और बहुत अलग तेज है, जो आम लोगों के चेहरे पर देखने को नहीं मिलता। इतनी खूबियां और तुम्हारा एटीट्यूड, बस पूछो मत। कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है तुम्हारी। अब तो इतनी तारीफ भी कर दी मैंने तुम्हारी, कम से कम अब तो मुझे अपना नाम बता दो, वरना मैं तुम्हें अजनबी कहकर बुलाऊंगी, फिर मुझे घूरना मत। वो चैटर बॉक्स की तरह बकबक करने में लगी हुई थी। लड़के ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और उस पर से नजरें फेरते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो आन्या ने पीछे से आवाज दी, ओ अजनबी यार, कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट एंड मुझे फॉलो जरूर करें।